We want to understand what we are doing as a church in prayer and fasting.
अगर हम समझना चाहते हैं कि प्रार्थना और उपवास के समय में हम क्या कर रहे हैं तो
This word is important.
तो यह वचन बहुत महत्वपूर्ण है.
The title of my message is understanding the role of the church.
और मेरे संदेश का शीर्षक है कलीसिया के किरदार को समझना.
So can you give me next 45 minutes?
तो अगले 45 मिनट में आपसे लूंगा.
Yeah, what is the church here for?
कलीसिया यहाँ पर किस मकसद से है?
Ephesians chapter 6 says, put on the full armor of God.
और एफिसियों के छठे अध्याय में लिखा है, परमेश्वर के पूरे कवच को पहन लो.
In a way, Paul is saying Christians in this world is on a war.
और एक तरफ पौलुस कह रहा है कि मसीह लोग युद्ध लड़ रहे हैं.
We are in a battle, not like in a battle, but we are in a battle.
और हम युद्ध में हैं, ऐसा नहीं कि हम युद्ध में हैं, ऐसा जैसे वैसे हैं, लेकिन हम युद्ध में हैं.
We have a spiritual battle every day.
और हमारा हर दिन आत्मिक युद्ध होता है.
To win this battle, we need to understand the role of the church.
और इस युद्ध को यदि जीतना है, तो हमें कलीसिया के किरदार को समझना होगा.
And if we have to fight the battle in India, we need to know again what we are here for.
और अगर भारत में युद्ध को लड़ना है, तो हमें समझना होगा हम यहाँ पर क्यों है.
To have more prayers in the church,
और कलीसिया में ज्यादा प्रार्थना हो,
we need to know what I'm talking about.
आपको समझना होगा मैं किस बात की बात कर
रहा हूँ. So if we want to understand what is the role of the church, we need to understand the Bible.
यदि आप कलीसिया के किरदार को समझना चाहते हैं, तो आपको बाइबल को समझना होगा.
And how the Bible is arranged.
और बाइबल को किस क्रम में रखा है, वो भी आपको समझना होगा.
Bible is arranged in a non-topical way.
और वो ऐसे सीधे-सीधे क्रम में नहीं रखी गई है.
It is not put, you know, in a way that you can read it as a, you know, as a story from beginning to end.
और ऐसा नहीं कि कहानी की तरह उसे रखा है कि आप शुरुआत से अंत तक उसे पढ़ लेंगे.
It's a broad overview of God's plan for mankind.
और वहाँ पर दिया गया है कि परमेश्वर की क्या योजना है मनुष्य जाति के लिए.
And you must understand the Bible in three parts.
और आपको शास्त्र को तीन भाग में समझना है.
So are you paying attention?
तो क्या आप ध्यान दे रहे हैं?
Yes.
हाँ.
And at the end, we are going to have an exam. I have a paper.
और अंत में एक परीक्षा होगी. मेरे पास एक पर्ची है.
Three parts.
तीन भाग.
The starting point.
और शुरुआत का point.
And an end point.
और अंत का भाग.
And there is a story in between.
और बीच में एक कहानी है.
The starting point.
और शुरुआत में.
Genesis 1, 2 and 3.
उत्पत्ति 1, 2 और 3.
End point.
और अंत में.
Revelation 20, 21, 22.
प्रकाशित वाक्य 20, 21 और 22.
These three, there is, these three are very, very important chapters.
और ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है.
Okay, the starting point, Genesis 1, 2 and 3.
और शुरुआत उत्पत्ति 1, 2 और 3.
And end point.
और अंत में.
And Revelation 20, 21 and 22.
प्रकाशित वाक्य 20, 21 और 22.
No religion explained how it has started and how it is going to end.
और कोई भी धर्म नहीं बता सकता इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये कैसे अंत होगा इसका.
Buddhism doesn't explain.
बुद्धिज्म नहीं बताता.
Hinduism doesn't explain.
और हिंदू जाति भी नहीं बताती है.
The only Judaism and Christianity explain how it has begun and how it's going to end.
और सिर्फ यहूदा और मसीह लोग बता सकते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये कैसे अंत होगी.
Hinduism talks about a cycle of things, never-ending cycle.
और हिंदू जाति एक साइकिल की तरह है, वो कभी नहीं खत्म होने वाली, हमेशा चलते रहने वाली साइकिल.
But the Bible talks about a beginning.
लेकिन शास्त्र एक शुरुआत के बारे में बताता
है. And I tell
है.
You, Genesis 1, 2 and 3 is the exact mirror image of Revelation 20, 21 and 22.
और मैं आपको बताऊं, उत्पत्ति 1, 2 और 3 बिल्कुल प्रतिमा है प्रकाशित वाक्य 20, 21 और 22 की.
If you look at Genesis 3 and Revelation 20,
अगर आप उत्पत्ति 3 और प्रकाशित वाक्य 20 देखेंगे तो
Genesis 3 speaks about how sin entered the world.
और उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में लिखा है कि पाप कैसे आ गया संसार में.
Revelation 20 deals, it talks about how God has dealt with sin.
और प्रकाशित वाक्य 20 में बताया गया है कि परमेश्वर ने पाप के साथ कैसे निर्णय किया.
And how God is going to deal with sin.
और अंत भी वहाँ पर दिया गया है कि परमेश्वर पाप के साथ कैसे कार्य करेगा.
Genesis 20 and Revelation 21 is mirror image.
और उत्पत्ति 20 और
Genesis 2 and Revelation 20.
उत्पत्ति 2 और प्रकाशित वाक्य 1 दोनों एक दूसरे की प्रतिमा है.
Genesis 20 it speaks about earth, heavens.
और उत्पत्ति 20 में लिखा है पृथ्वी के बारे में और स्वर्ग के बारे में.
How God was with man.
और कैसे परमेश्वर मनुष्य के साथ था.
Revelation 21 talks about new heaven and new earth.
और प्रकाशित 21 में लिखा है नया स्वर्ग और नई पृथ्वी के बारे में.
It talks about now the dwelling place of God is with man.
और वहाँ पर लिखा है कि अब परमेश्वर का निवास स्थान मनुष्य के साथ है.
And it's in Genesis 1 and Revelation 22, the first chapter and the last chapter.
और उत्पत्ति 1 और प्रकाशित वाक्य 22 पहला और आखिरी
अध्याय. Genesis 1 starts with saying, "Let there be light."
और उत्पत्ति 1 में लिखा है कि प्रकाश होने दो.
And Revelation 22 it says there's no longer any light but God himself will be the light.
और प्रकाशित वाक्य 22 में लिखा है और कोई रोशनी नहीं लेकिन परमेश्वर स्वयं वह प्रकाश है.
And if you read Genesis 1 2 and 3 Revelation 20 21 and 22 there's so many identical things there.
और अगर आप उत्पत्ति 1 2 3 और प्रकाशित वाक्य 20 21 और 22 पढ़ेंगे वहां पर एक जैसी बातें ही लिखी गई है.
It talks about rivers, it talks about precious stones, the gold, the onyx, the you know, the precious stones.
और वहाँ पर नदियों के बारे में लिखा है, कीमती ऐसे पत्थरों के बारे में लिखा गया है.
Talks about trees.
और वहाँ पर पेड़ों के बारे में लिखा
so
गया
there is
है.
A beginning in the Bible and there is an end in
तो
the Bible.
तो एक शुरुआत है शास्त्र में और एक अंत भी है.
And in between is God's story, how He has redeemed and restored what was lost.
और बीच में परमेश्वर की कहानी है कि कैसे उसने छुड़ाया और पूर्ण स्थापित किया उन बातों को जो खो गई थी.
How He created things and how He lost things.
उसने कैसे चीजों का निर्माण किया और फिर कैसे चीजों को खो दिया.
Through sin and how He planned to restore what was lost.
और पाप के द्वारा यह हुआ, फिर उसने योजना बनाई कि कैसे उन चीजों को वो हासिल करेगा.
So are you getting what I'm saying?
तो आपको समझ आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ?
Yes, yes. हाँ? Okay, be with me as I go through.
और जैसे मैं बता रहा हूँ आप मेरे साथ बने रहे.
And the role of the church, there are four parts if you want to understand
और
that.
और कलीसिया के चार किरदार हैं यदि आप उसे समझना चाहे तो.
Part one.
पहला भाग.
Genesis 1 to 21.
उत्पत्ति 1 से 21वां अध्याय.
It talks about God using individuals and families.
और वहाँ पर लिखा है कैसे परमेश्वर व्यक्तिगत रूप में और परिवार को इस्तेमाल करता है.
Pattern is seen here.
और वहाँ पर एक तरीका है जो हम देखते हैं.
Every man or family in mentioned there, there is sin, there's God's judgment, and there's God's restoration.
और वहाँ पर परिवार है, मनुष्य है, वहाँ पर पाप है, न्याय है, और परमेश्वर फिर पूर्ण स्थापित कर देता है.
There is no nation mentioned till then.
और वहाँ पर तब तक राष्ट्र के बारे में नहीं लिखा
गया. Then it goes to part two.
और फिर दूसरे भाग.
And you can put the next this thing. Slide. It says Genesis 2. It talks about nations.
और उत्पत्ति 2 में राष्ट्रों के बारे में लिखा गया है.
So Genesis 12 onwards till the end of the Old Testament, it talks about how God created a nation, starting with Abraham.
और उत्पत्ति के 12वें अध्याय से आगे तक लिखा गया है कि कैसे परमेश्वर ने राष्ट्रों का निर्माण किया अब्राहम के द्वारा.
And how God has dealt with the nations.
और कैसे परमेश्वर ने राष्ट्रों के साथ कार्य किया.
How God you know, formed this nation called Nation of Israel, which took almost 430 years.
और कैसे परमेश्वर ने इज़राइल के राष्ट्र को बनाया, जिसे निर्माण करने में 430 वर्ष लग गए.
And if we understand the reason why God made Israel, we will understand, you know, why we are here in some ways.
अगर हम समझेंगे कि परमेश्वर ने इज़राइल के राष्ट्र को क्यों बनाया, तो हम समझेंगे कि परमेश्वर ने हमें यहाँ पर क्यों रखा है.
When God creates something, He always gives them a purpose.
और परमेश्वर जब किसी वस्तु को बनाता है, तो उसे एक मकसद भी देता है.
Hallelujah.
Hallelujah.
You know, God has created you. God has given you life, and there is a purpose for each one of us.
और परमेश्वर ने आपका निर्माण किया है, आपको जीवन दिया है, और हर एक के लिए एक मकसद भी रखा है.
So when God created Israel, there was a purpose.
तो परमेश्वर ने जब इज़राइल को बनाया, एक मकसद था.
The purpose of the nation of Israel was to be a blessing to the nations.
और इज़राइल के राष्ट्र का यह मकसद था कि वह राष्ट्रों के लिए आशीष बने.
God said to Abraham, I will bless you and out of you will come many nations and you will be a blessing to the whole world.
और परमेश्वर ने इज़राइल से कहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम कई राष्ट्रों के लिए आशीषित ठहरोगे.
And this purpose will be so big and bigger than anything else in the world.
और यह मकसद संसार में किसी भी बात से बढ़ा होगा.
It will be so big so that others can join in this great purpose.
और यह मकसद इतना बड़ा होगा कि दूसरे भी उसमें शामिल हो जाएंगे.
Okay, part 1 was Genesis 1 to 11.
और पहला भाग था उत्पत्ति 1 से 11 अध्याय.
Part 2 is Genesis 12 onwards.
और दूसरा भाग है उत्पत्ति के 12वें अध्याय से आगे.
Part 3.
तीसरा भाग.
Israel's call. Why did God call Israel?
परमेश्वर ने इज़राइल को क्यों बुलाया?
Let's go, you know, deeper into what was the purpose.
आइए हम गहराई से देखें कि
Let's
उसका मकसद
Exodus
क्या था.
Exodus chapter 19 verse 5 and 6.
हम निर्गमन के 19वें अध्याय वचन 5 और 6 देखेंगे.
Now if you obey me fully and keep my command, then out of all the nation you will be my treasured possession. Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words you are to speak to the Israelites.
और वहाँ पर लिखा है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरे वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे. समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे. जो बातें मुझे इस्राएलियों से कहनी है, वे ये ही है.
It says, you are my treasured possession.
और वहाँ पर लिखा है कि तुम मेरे निज धन हो.
And you will be a kingdom of priests and a holy nation.
और वहाँ पर लिखा है कि तुम पवित्र राष्ट्र ठहरोगे.
That was the purpose of God choosing a nation called Israel.
और परमेश्वर ने इज़राइल को यही मकसद के लिए चुना था.
And he says, this nation will be identified as a kingdom of priests and a holy nation.
और उन्होंने कहा कि यह राष्ट्र याजकों का और पवित्र राष्ट्र ऐसा पहचाना जाएगा.
Hallelujah.
Hallelujah.
So what was the purpose of Israel?
तो इज़राइल का निर्माण करने का मकसद क्या था?
Yeah, what else? What was the purpose? To a kingdom of priests and a holy nation. What does the priest do?
याजक क्या करते हैं?
What is the, you know, the priests are there for what?
याजक क्या करते हैं? उनका क्या कार्य होता है?
What does the priest do?
याजक क्या करते हैं?
Yes, priest is supposed to mediate between God and man.
और याजक परमेश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थी करते हैं.
In a way, God is telling Israel, he says, you will be a nation who will mediate between me and this world.
और परमेश्वर इज़राइल को कह रहा है कि तू संसार और मेरे बीच मध्यस्थी करेगा.
It's not just few people in Israel, it says the whole of Israel will be a priesthood.
और केवल कुछ लोग नहीं इज़राइल में, लेकिन सारा इज़राइल याजक होगा और मध्यस्थी करेगा.
You are going to bring down the purposes that I have in my heart to this world.
और जो मकसद इस संसार के लिए मेरे हृदय में है वो तुम लेकर आओगे.
Are you understanding what I'm saying?
क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ?
Then it says you will be a holy nation.
और फिर लिखा है कि तुम पवित्र राष्ट्र ठहरोगे.
It says you will be a set apart people for me.
और तुम ऐसे लोग होंगे जो मेरे लिए अलग किए गए हैं.
It's not about salvation.
वो उद्धार को लेकर नहीं है.
Holiness is not about salvation.
पवित्रता उद्धार को लेकर नहीं
होती. You will be a different people in this world.
तुम संसार में अलग लोग होगे.
You are not going to be like the other people in the world, but you will be different.
जैसे दूसरे लोग हैं वैसे नहीं, लेकिन तुम अलग लोग होगे.
I will be your king and you will be my people.
और मैं तुम्हारा राजा होगा और तुम मेरे लोग होगे.
I will lead you and I will guide you.
और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा.
Hallelujah.
Hallelujah.
That was the purpose of God calling a nation like Israel.
और यही मकसद के लिए परमेश्वर ने इज़राइल के राष्ट्र को बुलाया था.
And I want to encourage you. We understand that. We understand why we are here today.
और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ. यदि हम इस बात को समझ ले तो हम समझ जाएंगे कि हमारा मकसद यहाँ पर क्या है.
A kingdom of priests.
याचकियों का राज्य
and a holy nation.
और पवित्र राष्ट्र
and a treasured possession.
और एक नीच धन.
You know, God is saying, you will be so special. You will be a peculiar people in this world.
और परमेश्वर कह रहा है कि संसार में आप खास लोग होंगे.
You know, if someone asks you, who is your king?
और यदि कोई आपसे पूछे आपका राजा कौन है तो
Yeah, there's someone, but I can't show you. He's there.
हाँ कोई है लेकिन बता नहीं सकता वो है.
You come to our tabernacle, you will see some smoke and you will see some. He's there. He's the king.
और ऐसा tabernacle देखेंगे, धुआं देखेंगे, वो है, वो राजा है वहाँ पर.
People, you know, other people say, what? We have a king, we have a throne, we have a man, we have a queen, we have family, royal family, and you don't have a king?
और लोग कहेंगे हमारे एक राजा है, एक सिंहासन है, एक परिवार है, और तुम्हारा परिवार नहीं है?
God said, I will be your king.
और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा राजा हूँ.
Hallelujah.
Hallelujah.
That's why he said, you will be a peculiar people.
और इसलिए वो कहता है कि तुम एक खास लोग होंगे.
On a Sabbath, you will not work.
और सबात के दिन तुम काम नहीं करोगे.
You will have your own laws.
और आपके अपने नियम होंगे.
Like Exodus 20 to Deuteronomy, it was all rules and regulation God gave that nation.
और निर्गमन की किताब और व्यवस्था विवरण की किताब में परमेश्वर ने उन राष्ट्रों को ऐसे नियम दिए.
How to fulfill the task of priesthood?
आपको याजक के कार्य को कैसे पूरा करना है?
Hallelujah.
Hallelujah.
So why did God create Israel?
तो परमेश्वर ने इज़राइल को क्यों बनाया?
That they will be a kingdom of priests and a holy nation.
ताकि वह ऐसा याजकों के राष्ट्र बने और पवित्र राष्ट्र
बने.
And
the rest of the Old Testament is about how Israel could never fulfill that call.
और बाकी पुराना नियम इस बारे में है कि इज़राइल कैसे उस बुलाहट को पूरी नहीं कर पाया.
That's the story.
और वो कहानी है.
You know, God was so with them.
के परमेश्वर उनके साथ इतना था.
God fought their battles.
परमेश्वर ने उनकी जंग लड़ी.
They won victory over greater kings than they can ever imagine.
और ऐसे महान राजाओं के ऊपर उन्होंने विजयता हासिल करी.
And God came upon people, the prophets, the king, and yet nobody could fulfill the full duty of priesthood and a holy nation.
और परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर आया, लेकिन फिर भी कोई भी उस बुलाहट को पूरी नहीं कर पाया.
God takes them out of their intended purpose.
तो परमेश्वर उन्हें उनके मकसद से बाहर ले आता है.
So in 722 BC, God takes out Israel.
तो 722 यीशु के जन्म से पहले परमेश्वर इज़राइल को बाहर ले आता है.
Israel nation is totally destroyed.
और इज़राइल राष्ट्र का विनाश कर दिया जाता है.
In 523 BC, God takes out Judah.
और 533 वर्ष यीशु के जन्म से पहले परमेश्वर यहूदा को लेकर आता है बाहर.
Judah is completely destroyed.
यहूदा का विनाश हो जाता
And
है.
There is almost 400 years silence.
और फिर 400 वर्ष शांति
God
रहती
stopped
है.
Speaking to them.
चुप्पी रहती है, परमेश्वर उनसे बात नहीं करता।
When Jesus comes into the scene,
और जब यीशु चित्र में आता है,
he affirms what I just spoke to you.
वो उन बातों को पक्का करता है जो अभी मैंने आपको बताई।
Fulfill the purpose and the call to which they have been called.
वो परमेश्वर के मकसद और बुलाहट को जिसलिए उन्हें बुलाया गया था पूरा नहीं कर पाए।
Matthew 21:43, this is what it says.
मत्ती 21 में लिखा है।
43 says, therefore I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will produce its fruit.
और मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि परमेश्वर का राज्य आपसे ले लिया जाएगा और ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो फल निर्माण करे।
So because you didn't fulfill your purpose,
तो क्योंकि आपने आपके मकसद को पूरा नहीं किया,
to be a royal priesthood and a holy nation,
कि आप ऐसे याजकीय याजक और पवित्र राष्ट्र बने,
I can no longer use you as what I intended to be, and I'm going to choose another people.
तो मैंने आपको जिस मकसद के लिए बुलाया था, वो आपके द्वारा पूरा नहीं हुआ।
And as you read the scripture, you will know that you know God is. You know, this is true of what I just shared.
और जैसे आप वचन को पढ़ेंगे, आप समझेंगे कि जो बातें मैंने आपको बताई वो सच्ची है।
God used individual, God used families, God used a nation.
परमेश्वर ने व्यक्तियों का इस्तेमाल किया, परिवारों का इस्तेमाल किया और राष्ट्रों का भी इस्तेमाल किया।
And they couldn't fulfill the call and the purpose.
और वह बुलाहट और मकसद को पूरा नहीं कर पाए।
And God said, I myself will come down.
और परमेश्वर ने कहा, मैं स्वयं नीचे आऊंगा।
That's why Jesus came down.
इसलिए यीशु नीचे आया।
Isaiah 59 verse 1, 2 and 1, 2 and 4. Let me just read it.
यशायाह 59 वचन 1, 2 और 4.
It says, surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from God. Your sins have hidden his face from you so that he will not hear. No one calls for justice. No one pleads the case with integrity. They rely on empty argument. They utter lies. They conceive trouble and give birth to evil. It is not that God could not save them because you have not fulfilled the purpose. I cannot help you.
सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुम में से ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनेगा। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, न कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठ बातें बकते हैं। उसको मानो उत्पात का गर्भ रहता और वे अनर्थ को जन्म देते हैं।
Okay, verse 15 to 17, Isaiah 59.
और यशायाह 59 वचन 15 से 17।
It says, truth is nowhere to be found, and whoever shuns evil becomes a prey. The Lord looked and was displeased that there is no justice. He saw there was no one. He was appalled that there is no one to intervene. So his own arm achieved salvation for him, and his own righteousness sustained him. He put on righteousness as his breastplate and the helmet of salvation on his head. He put on the garment of vengeance and wrapped himself in zeal as in a cloak.
हाँ, सच्चाई खोई और जो बुराई से भागता है सो शिकार हो जाता है। यह देखकर यहोवा ने बुरा माना, क्योंकि न्याय जाता रहा। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुज बल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। उसने धर्म को झीलम की नाई पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। उसने पलटा लेने का वस्त्र धारण किया और जलजलाहट को बागे की नाय पहन लिया।
We must understand this.
हमें यह बात समझनी है।
God called a nation.
परमेश्वर ने एक राष्ट्र को बुलाया।
God created a nation.
परमेश्वर ने एक राष्ट्र का निर्माण किया।
God gave them a purpose.
परमेश्वर ने उन्हें एक मकसद
God
दिया।
God called them.
परमेश्वर ने उन्हें बुलाया।
To be a kingdom of priests and a holy nation.
ताकि वह याजकों का राष्ट्र और पवित्र राष्ट्र
बने। To be a
set
apart people.
ताकि वह अलग लोग बने।
But each one of them failed.
लेकिन हर कोई हार गया।
And then God says, I myself will come down.
और परमेश्वर फिर कहता है कि मैं स्वयं आऊंगा।
I my own arm will achieve salvation.
और मैं स्वयं उद्धार हासिल करूंगा.
And Jesus comes down as a result of that.
और उसके कारण यीशु पृथ्वी पर आता है.
And through him righteousness and justice was met.
और उसके द्वारा धार्मिकता और न्याय पूरा होता है.
Hallelujah.
Hallelujah.
This is the gospel.
यह सुसमाचार है.
You know, if you tell people, you know, come to Jesus, you will be healed, not many people will respond.
और यदि आप लोगों से कहेंगे यीशु के पास आओ आप चंगाई पाएंगे, लोग प्रतिक्रिया नहीं देंगे.
You know, people will come and go back after they get healed.
और लोग आएंगे जब चंगाई पाएंगे तो वापस लौट जाएंगे.
But if you tell them what is the purpose that God created man.
यदि लेकिन आप उनके बताएं कि किस मकसद के कारण परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया
how
है
God, how man failed
और कैसे मनुष्य हार गया
through sin
पाप के द्वारा
and they, yet God made a nation out of people
और फिर भी लोगों के द्वारा परमेश्वर ने राष्ट्र का
and
निर्माण किया
failed.
और फिर भी वो हार गए
and finally God says, I myself will come down.
और अंत में प्रभु कहता है मैं स्वयं आऊंगा
through his life and through his death and through his resurrection
और उसके जीवन के द्वारा और उसकी मृत्यु और पुनरुद्धान के द्वारा
He creates a new Israel.
वो एक नया इज़राइल बनाता है.
That is the church.
और वह कलीसिया है.
You understand what I'm talking about?
क्या आप समझ रहे हैं मैं
And
क्या
he
बोल
gives,
रहा हूँ?
He gives them a same purpose.
और उन्हें भी वह वही मकसद देता
no
है.
No difference.
कुछ अलग नहीं.
What he gave to Israel?
जो मकसद उन्होंने इज़राइल को दिया,
to the church.
वही मकसद कलीसिया को देता है.
That's why it says in 1 Peter chapter 2.
इसलिए कहा गया है एक पत्रस अध्याय दो में वचन नौ
it says you are a chosen people
और वहां पर लिखा है कि तुम एक चुने हुए वंश
a royal priesthood
एक राजकीय याजक
a holy nation
पवित्र राष्ट्र
God's special possession
परमेश्वर के निज धन
so that you may declare the praises of him who has called you out of darkness into his marvelous light
इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसे गुण प्रकट
His purpose is not changed.
उसके मकसद बदले नहीं है.
A nation fail, God creates another nation.
राष्ट्र हार जाता है, परमेश्वर दूसरा राष्ट्र
And
बनाता
that
है.
Nation is called the church.
और वह राष्ट्र कलीसिया
And
है.
God says, you are a chosen generation.
और प्रभु कहता है कि तुम चुने हुए
you
वंश
are a royal priesthood.
तुम राजकीय याजक हो.
You are a holy nation.
तुम पवित्र राष्ट्र हो.
A God's special procession.
परमेश्वर के निज धन
What is the difference between Exodus 19 verse 25 and 5 and 6 and you know and 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10 there is no difference it's the same thing
उत्पत्ति और निर्गमन में क्या अंतर है कोई भी अंतर नहीं है कोई भी बात नहीं बदली है
हालेलुया
हालेलुया
आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस
मैं चाहता हूं आप ये समझ ले
इफ वी अंडरस्टैंड दिस वी विल प्ले द रोल ऑफ द चर्च
यदि यह बात हम समझ ले तो हम कलीसिया का किरदार
निभाएंगे वेरी ऑफन वी थिंक वी कम टू चर्च जस्ट टू वर्शिप एंड सिंग फ्यू सॉन्ग्स एंड गो बैक
कई बार हम सोचते हैं हम कलीसिया आते हैं कुछ गीत गाने के लिए और वापस लौटने के लिए
यू आर अ स्पेशल यू आर अ होली नेशन
आप खास लोग हो आप पवित्र राष्ट्र हो
यू नो इन योर नेबरहुड गॉड वांट्स यू टू बी अ डिफरेंट पीपल
और आपके आस पड़ोस में परमेश्वर चाहता है कि आप अलग लोग बने
यू नो इन योर वर्क प्लेस वेयरएवर यू आर गॉड वांट्स यू टू बी अ यूनिक पीपल
और आपके काम के जगह पर आप जहां कहीं भी है परमेश्वर चाहता है कि आप एक खास लोग बनकर रहे
हालेलुया यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग
आपको समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ
You are a chosen generation.
आप चुने हुए वंश है
Individually and collectively, you are a chosen generation.
व्यक्तिगत रूप में और समूह में आप एक चुने हुए वंश है
Yeah, I want to encourage you, it's not just you and God alone, it's We and God together.
मैं आपको बताऊं केवल आप और परमेश्वर अकेले नहीं लेकिन हम और परमेश्वर एक साथ
That's why coming to church is important.
इसलिए कलीसिया आना महत्वपूर्ण है
You know, it says you, it's plural, it says you are a chosen generation.
और वहां पर अनेक वचन है तुम चुने हुए लोग
हो। And I commend people coming from far away from Virar, Vasai and other places. You come, you know, sometimes you come late, yet you feel, oh, I want to be with the people of God.
और मैं शाबाशी देना चाहता हूँ जो लोग दूर से आते हैं विरार से वसई से मीरा रोड आप देर से आते हैं लेकिन फिर भी आते हैं क्योंकि आप परमेश्वर के साथ होना चाहते हैं
You are a royal priesthood.
आप याजकीय याजक
हैं। It's not about salvation.
वो उद्धार को लेकर नहीं है.
It's about the purpose to which God has called us.
लेकिन वह उस मकसद के बारे में है जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है. आप पवित्र राष्ट्र है.
You are saved and you are set apart.
आपका उद्धार किया हुआ है और आपको अलग किया गया है.
To be holy.
ताकि आप पवित्र बने.
Amen.
Amen.
You know, when you feel like getting angry and abusing someone, you don't do it because you know you are a holy nation.
जब आपको गुस्सा आता है और आपको लगता है आप किसी की बुराई करें, आप नहीं करते क्योंकि आप जानते हैं आप पवित्र राष्ट्र है.
When you know you look at your mobile and you feel like pressing that button to see something bad, you don't do it because the purpose to which you are called is to be a holy nation.
आपका जब मन होता है आप मोबाइल ले और कुछ गलत बातें देखें, तब आपको याद आता है कि आपको पवित्र राष्ट्र कहकर बुलाया गया है.
Hallelujah.
Hallelujah.
That is the purpose that God is given to us.
एक मकसद है जो प्रभु ने हमें दिया है.
So I'm going to break down this purpose again.
तो ये मकसद मैं नए करार में आपको फिर से समझाऊंगा.
Okay, it's here.
वो यहाँ पर है.
The purpose of the church.
कलीसिया का मकसद.
Number one.
पहला.
Prayer.
प्रार्थना.
That is the meaning of priesthood.
और वह याजक का अर्थ है.
Prayer of the church is always to be a royal priesthood.
और कलीसिया की प्रार्थना हमेशा यह है कि वह याजकीय राजकीय याजक बने.
And that prayer is not about just praying for my back pain and leg pain and my stomach pain and head pain.
और वो प्रार्थना केवल इसलिए नहीं है कि आप प्रार्थना करें आपके कमर के दर्द सिर के दर्द के लिए.
You know, it says, you know, it's about praying for the nations.
वो राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करने के बारे में है.
Praying for the our nation God has put us in.
हमें बुलाया गया है कि हम राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करें.
Hallelujah.
Hallelujah.
It says, my house will be called the house of prayer for the nations.
और वहाँ पर लिखा गया है मेरा घराना राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया है.
On a Friday evening, you don't feel like going for prayer.
और शुक्रवार की शाम आपको मन नहीं होता कि आप प्रार्थना के लिए जाएं.
And you feel, no, this is what I've been called for.
और आपको महसूस होता है मुझे यही मकसद के लिए बुलाया गया है.
This is the purpose that God chose me and God redeemed me and God caused me to be born again.
और यही मकसद के लिए परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है, बुलाया है ताकि मैं प्रार्थना करूं.
Hallelujah.
Hallelujah.
And I want to encourage you. Let's be a people who will really fulfill the purpose to which we have been called.
और मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं, आप ऐसे लोग बने कि वह मकसद को पूरा करें जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया है.
I was looking at as we started this time of prayer.
और जैसे हमने इस प्रार्थना का समय की शुरुआत की है.
We have around we have around 200 people.
और हमारे पास करीबन 200 लोग हैं.
And I looked at who really prays.
और मैंने देखा कि कितने लोग हैं जो दरअसल प्रार्थना करते
हैं. I'm not talking about your praying for your needs. Lord bless me, bless my family, bless my children, bless my dog, bless my cat, bless my all these things. I'm talking about beyond that prayer.
मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, ऐसी प्रार्थनाओं के बारे में नहीं कर रहा. प्रभु मेरी जरूरतें, मेरा परिवार, मेरा कुत्ता, मेरी बिल्ली, मैं वैसी प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूँ.
You're praying beyond you. You're praying for others.
खुद के बाहर आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे
हैं.
आप शहर की जरूरतों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.
I realize probably 15% of our church.
और मुझे पता चला शायद 15% ऐसे लोग हैं.
I'm not saying you're not praying. Please hear me what I'm saying.
और मैं नहीं बोल रहा कि आप प्रार्थना नहीं करते. मुझे सुन लो ठीक से मैं क्या बोल रहा हूँ.
We pray selfish prayers.
हम स्वार्थी प्रार्थना करते हैं.
You know, we pray just for ourselves.
हम अपने आप के लिए ही प्रार्थना
करते हैं. But actual priesthood means.
लेकिन सही में याजक का अर्थ है.
You don't pray for yourself. You pray for others.
आप अपने आप के लिए नहीं, लेकिन आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं.
You pray for the needs of the nation.
आप राष्ट्र की जरूरत के लिए प्रार्थना करते हैं.
And God wants us to be a real priesthood.
और परमेश्वर चाहता है ऐसे सच्चे याजक हम बन जाएं.
Hallelujah.
Hallelujah.
After hearing this message, will you start praying?
इस संदेश को सुनने के बाद आप प्रार्थना करने लगेंगे.
How did people pray in the Bible?
शास्त्र में लोगों ने कैसे प्रार्थना
की? Let me just show you a few.
मुझे कुछ प्रार्थना
Lamentation chapter 2.
विलाप गीत दूसरा अध्याय.
Verse 11.
11वां वचन.
It says, my eyes fail from weeping.
वहाँ पर लिखा है मेरी आंखें आंसू बहाते बहाते रह गई.
I am in torment within.
मेरी अंडगी antagidya ethi jati hai.
My heart is poured out on the ground because my people are destroyed, because children and infants faint in the streets of the city. How many of us pray like this?
और मेरे लोगों की पुत्री के विनाश के कारण मेरा कलेजा फट गया है, क्योंकि बच्चे वरन दूध पीते बच्चे भी नगर के चौके में मुच्छित होते हैं।
You know, verse 18.
18वां वचन।
The hearts of the people cry out to the Lord, you walls of daughter of Zion, let your tears flow like a river day and night, give yourself no relief, your ears no rest, and it just goes on and on and on.
और वचन 18 में लिखा है, हे प्रभु की ओर तन मन से पुकारते रहे, हे सियोन की कुमारी की शहर पनाह, अपने आंसू रात दिन नदी की नाई बहाती रह, तनिक भी विश्राम न ले, न तेरी आंख की पुतली चैन ले। और आगे भी वहां पर बातें लिखी गई
Jeremiah है। says, I cry, I weep, I wail, I go down on my knees and I give no rest for myself. I pray for the kingdom of God to come.
यरमियाह की किताब में लिखा है, मैं रोता हूँ, पुकारता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, अपने घुटनों पर बैठ जाता हूँ और परमेश्वर की ओर दुहाई देता हूँ।
You know, we need to pray for others because people are in darkness.
और हमें लोगों के लिए प्रार्थना करनी है क्योंकि लोग अंधकार में है।
Can you just, okay. You know, people's ears and eyes are closed.
और लोगों की आंख और कान इस तरह से बंद है।
That's what the Bible says.
और बाइबल यही कहती है।
1 Corinthians 2:4 says the eyes of the unbelievers are, you know, it's been shut by the enemy.
और 2 कुरिन्थियों की किताब में लिखा है कि अविश्वासियों की आंख शत्रु के द्वारा बंद की गई है।
And they can't hear, their ears are closed.
और वो सुन नहीं सकते, उनके कान बंद किए गए हैं।
As you pray.
और जैसे आप प्रार्थना करते हैं।
As you cry out to God.
और जैसे आप परमेश्वर की ओर दुहाई देते हैं।
God begins to give them sight.
और परमेश्वर उन्हें दृष्टि देता है।
And God gives them the ear to listen.
और परमेश्वर उन्हें कान देता है ताकि वे
सुन
सकें।
By the time we finish the service,
और जब तक ये सभा का अंत होगा,
3,000 people have died.
3,000 लोग मर गए होंगे।
In these 2 hours.
इन 2 घंटों में।
And out of that,
और उनमें से,
they say 2,900 people are going to hell.
और वहाँ पर ऐसा है कि 2,099 लोग नरक में जाएंगे।
Who will bring them?
कौन उन्हें लेकर
आएगा?
Who
will share them the gospel?
सुसमाचार उनके साथ
कौन बांटेगा?
कौन उन्हें उनसे बातें करेगा?
That takes us to the purpose number 2.
और वह हमारा दूसरा मकसद है।
That is, I mean, purpose number 1, second part, evangelism.
और दूसरा भाग ये है सुसमाचार बांटना।
That you may declare the praises of him who has called us out of darkness into his marvelous light.
ताकि आप उसकी स्तुति की घोषणा करें जिसने हमें अंधकार
से
अपनी रोशनी की ओर ले आया
है।
लेकिन हम प्रार्थना ही करते नहीं, लेकिन हम सुसमाचार भी बांटते हैं।
It's not just a few people of 4 or 5 people in the church that preach the gospel. We all need to preach the gospel.
ऐसा नहीं कि 4 या 5 लोग ही कलीसिया में सुसमाचार बांटे, लेकिन हम सबको सुसमाचार बांटना है।
It is the duty of Peter and Pat and all those who start with P to share the gospel.
ऐसा नहीं कि पीटर और पैट का ही काम है जिनका नाम पी से शुरुआत होता है, लेकिन सबका ही मकसद है कि हम सुसमाचार बांटे।
हालेलुया,
हालेलुया।
या व्हाई डू वी प्लांट चर्चेस?
हम कलीसियाएं क्यों बोते हैं?
यू नो, इन विरार एंड अदर प्लेसेस टुडे, इन मिरार रोड वी आर स्टार्टिंग, एवरी संडे वी आर स्टार्टिंग अ चर्च टुडे इन मिरार रोड।
विरार में हमने कलीसिया बोई और मिरार रोड में हर रविवार हम मिलने वाले हैं प्रार्थना के लिए। वहां पर कलीसिया बोई गई है। परमेश्वर ने हर एक को वरदान दिया है।
Each one here have a gift.
हर एक के पास जो यहाँ पर बैठा है
वरदान है। To some God has given 5 talents, to some 2, some 1.
किसी को 5 कोड़े दिए, किसी को 2, किसी को 1.
And each one has been called and given gifts.
और हर एक को बुलाया गया है और वरदान दिए गए हैं।
And we got to change the way we see ourselves.
और हमें बदलना होगा जिस दृष्टि से, जिस नजर से हम अपने आप को देखते हैं।
We got to believe in this. in this life we are going to be the royal priesthood and the holy nation.
और विश्वास करना होगा कि इस जीवन में हम राजकीय याजक और पवित्र राष्ट्र हैं.
You know, there's an event that happened in Paul's life.
और ऐसी बात हुई थी पौलुस के जीवन में.
He was in Damascus and the moment he got saved, he started preaching.
वो दमास्कस में थे और जैसे उनका उद्धार हुआ वो प्रचार करने लगे.
And it says he was persecuted and he was going to be arrested.
और वहाँ पर लिखा है उनका विरोध हुआ और उन्हें कैद में डालने वाले
And
थे.
It says he was lowered down in a basket.
और उन्हें एक बास्केट में नीचे डाला गया.
Imagine the person who was holding the rope.
और सोचो उस व्यक्ति के बारे में जो रस्सी पकड़ के बास्केट में उसे नीचे
डाल रहा था. He didn't know he was holding the entire New Testament in that basket.
और उसे पता नहीं था वो पूरे नए करार को उस बास्केट में
पकड़
रहा था.
He was just doing what he's being called to do.
और वो वही कर रहा था जो करने के लिए उसे
बुलाया गया था. He was saving Paul's life.
वह पौलुस के जीवन को बचा रहा था.
Look at your hands. Look at your hands. Just look at your hands.
अपने हाथों को देखें, हथेलियों को
देखें. I want to say God has given you things to do.
और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि प्रभु ने आपको दिए हैं.
If you don't do what you're called to do, this hands that God has created, you're making useless for what God has given to.
जो वरदान आपको प्रभु ने दिए हैं, यदि आपके हाथों को आप उसके लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे तो सब व्यर्थ है.
So I want to encourage you.
मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ.
Let's evangelize.
प्रार्थना करें और सुसमाचार बांटें.
Part two.
दूसरा भाग.
The purpose two. Is to
दूसरा मकसद
resist the enemy.
है ताकि आप शैतान का विरोध करें.
God has given us the power.
परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया
है. It says all authority in heaven and earth has been given to me.
वहाँ पे लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार मैंने आपको दिया
है. Therefore go.
इसलिए जाओ.
And today we have power and authority.
आज हमारे पास सामर्थ्य और अधिकार
we
है.
We can resist the enemy.
हम शत्रु का विरोध
What's
कर सकते
going on in our nation, we can stand up and resist the enemy.
और जो बातें हमारे राष्ट्र में हो रही है उसके लिए हम खड़े होकर शत्रु का विरोध कर
Isaiah
सकते हैं.
Isaiah 58 talks about what kind of fasting he wants us to do.
और यशायाह 98 में वहाँ पर लिखा है किस तरह का उपवास वह चाहता
you read
है हम
chapter,
करें.
Chapter 58 verse 1 to 9 it talks about what kind of fasting he wants us to do.
अगर आप यशायाह 58 पढ़े तो आपको पता चलेगा किस तरह का उपवास प्रभु चाहता है हम करें.
Let me just show you a scripture, Jeremiah chapter 1 verse 18.
मैं आपको एक वचन बताऊं यिर्मयाह पहला अध्याय.
He is talking to a 17-year-old Jeremiah.
और वहाँ पर वह 17 वर्षीय यिर्मयाह से
बात कर रहा है. He has done nothing for God.
उसने परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं
This
किया.
This is what God said to Jeremiah.
और प्रभु यिर्मयाह से यह
Today
कहता है.
I have made you a fortified city.
और आज मैंने तुम्हें ऐसा दृढ़ शहर बनाया है.
An iron pillar and a bronze wall to stand against the whole land.
मैंने आज तुम्हें इस सारे देश और यहूदा के राजाओं हकीमों और याचकों और साधारण लोगों के विरुद्ध दड़ वाला नगर और लोगों के खंबा और पीतल की शहर पना बनाया है.
Anybody who is 17-year-old here?
कोई है जो 17 वर्षीय है यहाँ पर?
दिव्या, 17.
17 वर्ष.
God is saying to a 17-year-old, you're like a fortified city. I made you a fortified city.
और परमेश्वर 17 वर्षीय व्यक्ति बच्चे से कह रहा है, मैंने तुझे एक दृढ़ शहर बनाया है.
And a bronze wall.
और तुझे ऐसा लोहे का खंबा और पीतल की शहर पनाह बनाया है ताकि तू शत्रु के विरोध में खड़ा रहे. और हमें विश्वास करना होगा उन बातों पर परमेश्वर ने जो कही
हैं.
और कई बार हम सोचते अरे मैं बेचारा मैं क्या करूं. आप चुने हुए
वर्ष. You are a royal priesthood. You are a holy nation.
पवित्र राष्ट्र.
We can resist the enemy.
हम शत्रु का विरोध कर सकते हैं.
We pray.
इसलिए हम प्रार्थना करते
हैं. That's why we worship.
इसलिए हम आराधना करते हैं.
That's why we lift up the name of Jesus.
इसलिए हम यीशु के नाम को ऊंचा करते हैं.
The more we do, I want to say the enemy will be destroyed.
और जितना हम करेंगे मैं आपको बताऊं शत्रु का विनाश होगा.
Finally.
अंत में.
We are here to bring the kingdom of God.
हम यहां हैं ताकि हम परमेश्वर के राज्य को लेकर आएं.
Purpose number three.
तीसरा मकसद.
We got to bring the kingdom of heaven on earth.
हमें स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर लेकर आना है.
Amen.
Amen.
That prayer Jesus taught us to pray.
और यीशु ने हमें वह प्रार्थना करना
सिखाया. Your kingdom come.
तुम्हारा राज्य आए.
Your will be done.
तुम्हारी इच्छा पूरी हो.
On earth as it is in heaven.
पृथ्वी पर जिस तरह से स्वर्ग में है.
There is no injustice in heaven.
स्वर्ग में कोई अन्याय नहीं है.
Any poverty in heaven? Any poor people in heaven?
कोई गरीबी है स्वर्ग में? कुछ गरीब लोग हैं.
Any sick people?
कोई बीमार लोग हैं?
We got to pray the kingdom of God down.
हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर का राज्य आए.
Amen.
Amen.
Then we will bring justice down into this nation.
फिर हम हमारे राष्ट्र में न्याय लेकर आएंगे.
And if we understand the purpose,
यदि हम मकसद को समझ ले तो
we will be able to pray.
हम प्रार्थना कर पाएंगे.
So what did I say?
तो मैंने क्या बताया आपको?
Let me just quickly finish.
मैं जल्दी से ही पूरा करना चाहता
हूँ. The Bible has a beginning.
बाइबल में शुरुआत है.
Has got an end.
और अंत भी है.
Yeah, it starts with Genesis 1 to 11.
और उत्पत्ति 1, 2, और 3 से शुरुआत होती है.
God using individuals.
और लोग परमेश्वर व्यक्तियों का इस्तेमाल करता है, परिवारों का इस्तेमाल करता है.
They sin.
वो पाप करते हैं.
Judgment comes.
न्याय आता है.
God restores them.
परमेश्वर उन्हें पुनर्स्थापित करता है.
Then he creates the nation through Abraham.
फिर अब्राहम के द्वारा एक राष्ट्र का निर्माण करता है. उन्हें एक मकसद देता है.
And he gives them almost 4,000 years.
और फिर उन्हें 4,000 वर्ष देता है.
2,500 years.
शायद 2,500 वर्ष.
And they fail to keep the purpose.
और वह मकसद रखने में चूक जाते हैं.
And God himself comes down.
और परमेश्वर स्वयं आता है.
And out of him creates a new Israel.
और उनके द्वारा नए इज़राइल का निर्माण होता
है. Which is church.
जो कलीसिया है.
And he gives the church a purpose.
और कलीसिया को भी वह एक मकसद देता है.
To be a royal priesthood.
ताकि वह राजकीय याजक बने, पवित्र राष्ट्र बने.
And that purpose is to pray and evangelize.
और वह मकसद है आप प्रार्थना करें और सुसमाचार बांटें.
Resist the enemy.
और शत्रु का विरोध करें.
Bring down the kingdom of heaven on earth.
और परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर लेकर
आए. That's why we are here.
इसी मकसद के लिए
so
हम यहाँ हैं. तो क्या मैं आपको प्रोत्साहन
दूँ? Understand the purpose and the role that we have in this generation.
परमेश्वर के मकसद और किरदार जो इस पीढ़ी के लिए है उसे समझ लीजिए.
And give ourselves to it.
और अपने आप को उसके लिए
Amen.
दे लीजिए.
Will you give yourself to that?
क्या आप अपने आप को उसके
Come,
लिए
let's
देंगे? आइए हम खड़े हो जाएं.
Let us pray.
प्रार्थना करें.
Let us pray. My prayer today is that God will help us understand.
और मेरी आज की प्रार्थना है कि परमेश्वर हमें समझने में मदद करेगा.
And we will not only understand, we will do what we are called to do.
हम केवल समझेंगे नहीं, लेकिन जिस जो करने के लिए हमें बुलाया गया है,
Can
वो
we just
हम
lift
करेंगे.
Our hands to God?
क्या हम हमारे हाथों को परमेश्वर
Father, we thank you that you called us to be a royal priesthood.
पिता धन्यवाद, आपने हमें राजकीय याजक बनने के लिए बुलाया.
Nation,
पवित्र राष्ट्र.
A chosen generation.
एक चुना हुआ वंश.
A peculiar people.
खास लोग.
So that we may declare the praises of him who have called us out of darkness into light, Lord.
ताकि हम उसकी तारीफ करें जिसने हमें अंधकार से रोशनी में
लेकर आया. Lord, we pray that you will help us to fulfill the purpose to which you have called us,
हम प्रार्थना करते हैं जिस मकसद के लिए आपने हमें बुलाया वह पूरा हो जाए.
That we will be a people of prayer.
ताकि हम प्रार्थनावादी लोग बने.
Lord, we will be a people who will share the gospel.
ऐसे लोग जो सुसमाचार बांटेंगे.
We will be a people set apart and who will resist the works of the enemy, Lord.
और ऐसे लोग जो अलग होकर शत्रु के कार्य का विरोध
करेंगे. Lord,
we
will be a people who will bring the kingdom of heaven down, Lord.
और ऐसे लोग बनेंगे जो स्वर्ग को पृथ्वी पर लेकर आएंगे. हमें अनुग्रह दो.
The season of prayer and fasting.
इस प्रार्थना और उपवास के मौसम.
Give us a revelation and a wisdom, Lord God.
हमें प्रकाशन दो और बुद्धि दो.
That we may know you better.
ताकि हम
Then we may understand your purpose, Lord.
आपके मकसदों को जान सके.
That we may live according to that purpose, Lord.
ताकि उन मकसदों के अनुसार जीवन
None will be disqualified, Lord.
और कोई भी ऐसा नहीं जो नहीं कर
पाए. And we will bring in the kingdom of heaven.
और स्वर्ग के राज्य को लेकर आएंगे.
We pray for that, Lord.
हम प्रार्थना करते हैं.
Increase that prayer fervor in our midst, God.
प्रभु प्रार्थना हमारे बीच में
Put a fire in our hearts, God.
हमारे हृदय में आग भर जाए.
Lord, put a purpose in our hearts, God.
हमारे हृदय में मकसद भर जाए.
Lord, make us your people, Lord.
हमें तुम्हारे
What do you meant us to be, Lord God?
और जो जिसके लिए आपने हमें बुलाया.
In Jesus name.
यीशु के नाम में.
Amen.
Amen.
Amen. God bless you.
प्रभु आपको आशीष दे.